नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाष्टपयेष्वदेशो नित्यं भगवद सेवया भगवदे उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् एते चं साकला पुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं मृदयन्ते युगे युगे नाम संकेतनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम् निगम कल्पातरोर्गणितं परं सुखमुखदमृत दिवसम्मुतं विबद भक्तं रासमालयं मुहुरोहुरासिक भूवि भावकः हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं स्कंद छह अध्याय सोलह श्लोक संख्या पांच बंधु ज्ञाति आरी मध्यस्थ मित्र उदासीन विद्विषाः सर्वे एवा हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशः स्थितमितः बन्धुज्ञातरिं मध्यस्थाम् मित्रोदासीन विद्विषाः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः बन्धु दोस्त ज्ञाति कुटुम्बी आरि शत्रु मध्यस्था बिचोलिये मित्र शुभचिंतक उदासीन उदासीन विद्विषा अथवा द्वेषी सर्वे सभी एवा निस्संदेह ही निश्चय ही सर्वेषां सबोका भवन्ति होते हैं क्रमशः धीरे धीरे मिता परस्पर अनुवाद उत्तरपर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है जो अपने जीवात्मा के को लिए जा रही है और जिसमें सभी लोग समयानुसार मित्र कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहते हैं वे उदासीन मध्यस्था द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करता है इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंध नहीं है तत्पर्य इस भौतिक जगत में यह हमारा व्यवहार सिद्ध अनुभव है कि जो व्यक्ति आज किसी का मित्र है वे काल उसका शत्रु बन जाता है मित्र अथवा शत्रु परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध वास्तव में हमारे भिन्न भिन्न व्यवहारों से उत्पन्न है। चित्रकेतु महाराज अपने मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, किंतु वे चाहते तो स्थिति को भिन्न रूप में सोच सकते थे। वे यह सोच सकते थे कि जीवात्मा पिछले जन्म मेरा शत्रु था, जो आप मेरे पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए असमय प्रयाण कर रहा है। तो अपने मृत पुत्र को अपना शत्रु सोचकर वे शोक करने के बजाय अपने शत्रु के मित्र पर उलसित क्यों नहीं हुए? जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमानानि गुणाय कर्माणि सर्वशः। वास्तव में प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ गतित होता है। अतः सतगुण की संगति से जो आज मेरे मित्र है, वही काल राजो तथा तमोगुणों की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। प्रकृति के इन गुणों के कार्यशील होने से ही हम मोहवश अन्य को मित्र, शत्रु, पुत्र या पिता मान बताता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संयम रूपकदामयं ददाति सावदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगनारघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनाललितश्रीविशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिककंता राधाकंता नमस्तुते। तप्त गंजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च प्रीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलम्, कुलं नास्त्येव 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 गतिरन्यताम्। बन्धुज्ञातारि मध्यस्था मित्रोदासीन विद्विषः, सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशोमिता। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवाहमान है, जो अपने जीवात्मा को लिए जा रही है और जिसमें सभी लोग समयानुसार मित्र कुटुंबी तथा शत्रु बनते रहता है। वे उदासीन मध्यस्था द्वेषी तथा कई अन्य प्रकारों से कार्य करता है। इतने पार भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबद्ध नहीं है। या राजा चित्रकेतु के संबंध में नारद मुनि और अंगिरा मुनि दो महापुरुष भगवान की कृपा से उनके पास पहुंच गए थे। जब वे विचलित थे, शोक अवस्था में थे, क्योंकि उनके प्रिय पुत्र का देहांत हो गया था। ये स्वाभाविक है, जब किसी के जो पुरुष स्त्री के पुत्र मार जाते हैं, विशेष करके जब छोटा बच्चा है, तो बहुत विचलित हो जाते हैं और रोते हैं। और भक्त के रूप में भी है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि संबंध है शरीर से, और उसी समय स्नेह प्रेम है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं, स्पष्ट है कि चित्रकेतु तो सज्जन थे, रजत थे, उसके पास ज्ञान था, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था। इसलिए जब ज्यादा विलाप कर रहे थे भगवान की प्रेरणा से, नरेंद्र मुनि और अंगिर मुनि वहां पर उपस्थित हुए थे उनको सात उपदेश देने के लिए, जिससे वे आध्यात्मिक अवस्था पे रहते हुए आगे जा सकते अपना जीवन में, विशेष करके आगे जा सकते आध्यात्मिक मार्ग में। क्योंकि जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो दो प्रकार के कर्तव्य है, कार्य है, नित्य क्रिया या नैमित्तिक क्रिया, ये जो प्रतिदिन करना है, जो कभी कभी करना है, लेकिन ये गौण कार्य है वास्तव में, ये शारीरिक कार्य है सड़क के रूप में भी। इसके बाद जो नित्य कार्य है, जो आध्यात्मिक अवस्था पर स्थित रहते हुए भगवान के संबंध में है, वास्तव कार्य यह है, हम भगवान के नित्य दास है तो उनकी सेवा करना है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस भौतिक जगत में रहते हुए, विशेष करके बद्ध जीव बाह्यमुख होकर अपने के अपने लिए सब कुछ कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन कृष्णेंद्र प्रीति के लिए वास्तव में हमको सब कुछ करना है, सोचना है, बोलना है, कार्य करना, जिससे भगवान हरि कृष्णा संतुष्ट हो जाता है। हमको सब कुछ करना है कार्य तन मन वाचा से, तो स्वाभाविक है कि जब कोई परिवार के मर जाता है कि विलाप कर रहा है, लेकिन जद विलाप नहीं करना है, अपने आप को संभालना है और समझना है कि वास्तव में हम भगवान के दास हैं, और जो भी दूसरे जो जीवात्मा जो है भी शरीर छोड़ता है, लेकिन वे भी आगे जाएंगे, अगर मुक्त अवस्था पर है तो भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, अगर पूर्ण रूप से अनुभव ना किया अपना स्वरूप तो फिर से, तो अगर भक्त है तो अगले जन्म में वैष्णव के परिवार में जन्म लेंगे और इसके बाद आगे जा सकता है, भजन करते हुए उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। तो भगवान की कृपा से यहाँ पर श्री नारद मुनि की जो शक्तिशाली है, शुद्ध वैष्णव है, शक्तिवेश अवतार है, जीवात्मा है, लेकिन उनके पास शक्ति है, भक्ति शक्ति भगवान की कृपा से, भगवान के प्रतिनिधि है, शुद्ध वैष्णव है, उनकी कृपा से राजा के पुत्र शरीर छोड़ दिए थे, जीवात्मा पुत्र के रूप में, राजा के पुत्र के रूप में शरीर छोड़ दिया, तो विलाप कर रहे सब महल में, राजा रानी विशेष करके, लेकिन दूसरे भी। तो भगवान की कृपा, नारद मुनि की कृपा से जब वहां पर पहुंच गया है, नरद मुनि उनको जीवात्मा को बोलिए वापिस आने के लिए शरीर में, तो सरण पुरुष ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं आजकल भी लोग, कोई मर जाते फिर भी किसी प्रकार से वापिस आना ले आना है, और शरीर छोड़ने से पहले भी प्रभुपाद भी कहते थे, एक बार एक वृद्धावस्था के पुरुष थे, डॉक्टर से बोले थे मैं आपको एक कि ना 1,000 1 करोड़ या जो भी है पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे को जीवित रहना है और मेरे को एक और साल दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर ने बोले तो संभव नहीं है, जब आपको जाना है तो जाना है, 1 मिनट भी नहीं रह सकता और पैसे से नहीं होता है। तो लेकिन शुद्ध वैष्णव की कृपा से तो संभव है, तो वापिस आ गया जीवात्मा। और यहाँ पर नरमुनि की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से राजा को उपदेश देता है, साधु उपदेश देता है, क्योंकि वही तो सोचता है ये हमारे लाला है, वापिस आ गया बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहता है ये कौन है, बुद्ध बात तो शरीर में थे, एक शरीर में थे दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, तो कौन वास्तव में पिता है माता है, वास्तव में पिताजी है भगवान से कृष्णा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणदार, हम भगवान के अंश है, जीवात्मा परमात्मा है, भगवान है, मम एवं स जीव लोके जीव भूता सनातना, इस दृष्टि से हम भगवान के पुत्र है आध्यात्मिक दृष्टि से। और ये वास्तविक संबंध है, स्थायी संबंध है, सनातन संबंध है, वास्तव संबंध है, नित्य संबंध है, इसलिए साधक को देखना है, जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में है उनको देखना है कि इसमें प्रवेश कर सकते हैं अच्युत परिवार में, इसलिए तो हम अभी कहते हैं हम अच्युत गोत्र में है, पहले दूसरे गोत्र भी है जब दीक्षित नहीं है, और लेकिन यहाँ पर भारतवर्ष में जन्म लिया है, वशिष्ठ मुनि गोत्र है, कश्यप मुनि गोत्र है इत्यादि, ठीक है, लेकिन अंत में तो कृष्ण के परिवार में कृष्ण के साथ तो रहना है, और वास्तविक संबंध भौतिक जगत संबंध स्थायी नहीं है, यहाँ पर कहता है स्थायी संबंध नहीं है, संभव नहीं है इस भौतिक जगत में, जन्म लेता है कुछ समय के लिए रहता है तो संबंध होता है, लेकिन सिर्फ जब तक शरीर है तब संबंध है, लेकिन यह भी पक्का नहीं है, जैसे यहाँ पर कहता है जीवात्मा, यहाँ पर राजा को बताता है, एक दिन में तो यहाँ पर हम भी देख सकते हैं इस भौतिक जगत में तो पुत्र है, लेकिन कभी कभी चले जाते घर से, उनको अच्छा नहीं लगता है, और भाई के साथ रहता है, लेकिन कभी कभी तो वहाँ पर शुरुआत में तो मित्रता तो है, लेकिन कभी कभी ये भी शत्रु बन जाता है परिवार में भी, और बाहर की बात तो और है, कभी कभी मित्र है और दूसरे दिन शत्रु बन जाता है छोटे से कारण से, लेकिन वास्तव में जो आगे है वैष्णव ये सबके मित्र है, क्योंकि जैसे भगवान क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम है, तो इसलिए प्रेम भाव है सबके प्रति, और भगवान तो सबके पिता है, तो वास्तव संबंध उनके साथ है, प्रेम संबंध है, आध्यात्मिक संबंध प्रेम संबंध है, और जब भौतिक जगत में है जो भक्त जो भी है उनके उनके पास भी प्रेम संबंध है भगवान के साथ और दूसरे के साथ, जब भगवान केंद्र में है तो भगवान के प्रति प्रेम है, दूसरे के प्रति भी प्रेम होगा, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है दूसरे के साथ वास्तविक प्रेम नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है सब कुछ, और कहता है प्रेम हमारा प्रेम संबंध है, लेकिन यह वास्तव प्रेम नहीं है, भौतिक प्रेम है, लेकिन कुछ समय के लिए है। लेकिन भगवान के साथ जो प्रेम जो होता है यह हमेशा के लिए है, और शुद्ध वैष्णव के साथ गुरुजान नित्य संबंध है, ये प्रेम संबंध है। अन्यथा जैसे यहां पर उल्लेख किया है, एक दिन मित्र है दूसरे दिन शत्रु बन जाता है, और परिवार में भी कुछ समय के लिए रहता है लेकिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा और दूसरे परिवार परिवार में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए जब कोई चले जाता है तो स्वाभाविक है एक दृष्टि से भौतिक जो जग में जो लोग जो हैं उनके लिए तो होता है और भक्त के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर है। बाहर के लोग जो भक्त नहीं है तो ये जो प्रेम है ये वास्तविक प्रेम नहीं है, भौतिक प्रेम है और कुछ समय के लिए है, और कभी कभी क्रोधित भी हो जाता है, आपस में लड़ाई कर रहा है, और जब चले जाता है विलाप कर रहा है, ये सब भौतिक भाव है। लेकिन भक्त के जो भाव अलग है, क्योंकि भगवान केंद्र में है और ये वास्तविक भाव है, और वास्तव में जो भौतिक अलग अलग भाव जो होता है ये है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में है लेकिन प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तव भाव यह है जब कृष्ण केंद्र में है। और वहां पर भी भक्त लोग भी जब प्रियजन कोई पिताजी माताजी या लड़के चले जाता है या गुरुदेव चले जाता है तो ये स्वाभाविक है कि विलाप कर रहा है, रोता है, स्वाभाविक है, लेकिन भावना लाग है बाहर के जो भक्त नहीं है, भौतिक भावना है, भौतिक भाव है, और वैष्णव के आध्यात्मिक भावना है, आध्यात्मिक भाव है जो ठीक है जो। लेकिन फिर भी अपने आप को तो संभालना है, भक्त को भी अगर कोई चले जाता है रोना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आगे जाना है, भजन करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, और भक्त को मालूम है कि ठीक है पुत्र या पिताजी या गुरुदेव चले गया हमारे दृष्टि से अप्रकट हो गया है, लेकिन हम सनातन है आगे जाएंगे, भगवान के धाम में वापिस चले जाता है शुद्ध वैष्णव, या दूसरे परिवार में जन्म लेंगे लेकिन वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे अगर अच्छा तरह से भजन किया है, तो हमको अच्छा तरह से भजन करना है। और नित्य लीला में प्रवेश करना कि यह हमारे परम गति है, यह हमारी इच्छा है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना वास्तव में प्रतिदिन। तो संबंध ये वास्तविक संबंध है कृष्ण के साथ, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो बद जीव उनको नहीं मालूम है, लेकिन जब भगवान की कृपा है श्री गुरु के वैष्णव के माध्यम से समझ सकता है कि वास्तव समय कृष्ण के साथ है, महाप्रभु के साथ। तो भजन करते करते ये धीरे धीरे समझ सकता है, अनुभव कर सकता है वास्तविक संबंध, स्थायी संबंध। जैसे पंच प्रकार के संबंध है कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में, इसका नाम भी है। तो जैसे ये संतरास, दस्यरास, सख्यरास, वत्सल्य रास एवं मधुर्य रास, इसका दूसरा भी नाम है स्थायी भाव। स्थायी भाव है ये हमेशा के लिए है, कृष्ण मेरे मित्र है, कृष्ण मेरे पुत्र है, ये हमेशा के लिए है तो ये रहता है। लेकिन दूसरा भाव भी आ जाता है, कभी कभी सुखपूर्वक सेवा कर रहा है लेकिन जब कृष्ण भी लीला में गोलोक वृंदावन में भी या इस भौतिक जगत में प्रकट लीला में, तो जब कृष्ण चले जाता है तो गोचरण लीला के लिए यशोदा माई तो उदासीन हो जाती है, और कृष्ण चले जाता है और कभी कभी विलाप भी कर रही है, ये आध्यात्मिक भाव है, संचारी भाव कहलाता है। तो जो भी अभाव है, जब कृष्ण केंद्र में है यह ठीक है, ये सही है, लेकिन कृष्ण केंद्र में नहीं है यह भौतिक है, ये चोरना है। इसलिए निरंतर भगवान केंद्र में रखना है, उनका स्मरण करना है। स्मर्तव्य सतत विष्णु स्मर्तव्य अनुजात उचित सर्व विधि निषेध यश्योर एतयोर किंकर। ये परम पुराण के एक श्लोक है। अलग अलग नियम है जो हमको पालन है, पालन करना है, और जो हमको क्या ना करना है, ये भी अलग अलग नियम है, निषेध विधि और निषेध है, हमको पालन करना है शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है, विधि है कि हमको भगवान का निरंतर स्मरण करना है, और क्या ना करना है, भगवान को भूल जाना। तो इसके लिए हमको प्रयास करना, और आसान नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हमको प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना। और लेकिन तो युग धर्म है नाम कीर्तन, क्योंकि बिना नाम कीर्तन भगवान का स्मरण करना कठिन है। सत्ययुग में तो क्योंकि वातावरण सात्विक था, बहुत सारे वस्त्र में सब लोग, इसका नाम भी है ये हंस जाति है, तो सब हंस के समान, मतलब इस भौतिक जगत में रहते हुए जैसे हंस है, अगर एक कटोरी में अगर कोई दूध रखता है, और आपको भी मालूम है तो पहले भी ये था, आज भी होता है, तो कभी कभी दूध में पानी मिलाता है, ऐसा करते हुए ज्यादा दूध है बेचने के लिए, ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन तो लोगों को नहीं मालूम है, मुश्किल है समझने के लिए, अगर तोरस देता है पानी। लेकिन हंस जब कटोरी देखता है तो दूध पीता है और पानी चोरता है, क्योंकि ये एक गुण है। और जो इस भौतिक जगत में रहते हुए लेकिन आध्यात्मिक अवस्था पे स्थित है, कलुषित नहीं हो जाता है इस भौतिक जगत में रहते हुए, जो मुश्किल है कलुषित नहीं होना इस भौतिक जगत में रहते हुए। लेकिन जो आज्ञा है ये हंस के समान है, इसलिए जो सन्यासी जो है उनका नाम है परमहंसा, परिव्रजक आचार्य, परमहंसा है, हंस है लेकिन परमहंसा है, क्योंकि वे निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, भौतिक जगत से पर है, कलुषित नहीं हो जाता है। तो सत्ययुग में लगभग सब लोग तो हंस के समान, वैष्णव ब्राह्मण के गुण उनके पास सत्यगुण में स्थित है, इसलिए उसी समय तो भगवान का चिंतन करना संभव था। और लेकिन कलयुग में अत्यंत मुश्किल है, कठिन है। लेकिन महामंत्र के उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनकी आयुत्व की कृपा से उनका स्मरण कर सकता है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। लेकिन शुरुआत में तो मुश्किल है, इसलिए भगवान के बारे में चिंतन, भगवान के बारे में सबसे पहले श्रवण करना है। श्रवण करते हो भगवान के बारे में उनके चिंतन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद उनके गुणगान भी करना है, तब अच्छा तरह से बैठ जाता है भावना में। तब कृष्ण के बारे में सुनता है, उनके सुंदर रूप श्याम सुंदर, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, सिक्की पीछे मोलिन, उनके बहुत सुंदर रूप है, श्याम रंग के है, त्रिभंग ललित तीन जगह में तेरा है, सीधा नहीं है शरीर खेल में, और इसके बाद मोरपंख में या पगड़ी में या बाल में मोरपंख, मुकुट में या पगड़ी में बाल में मोरपंख रखता है, उनके एक भूषण है, इसके लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण के पास हमेशा मोरपंख है एवं बांसुरी है। तो जब ये सुनता है और भगवान का दर्शन जब मिलता है, जैसे मंदिर में बहुत सुंदर ठाकुर जी है हमारे, सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर प्रतिदिन श्री श्री गुणिता कृष्ण बलराम श्री श्री राधा समस्त का अद्भुत दर्शन ले सकता है। ऐसे करते हुए दर्शन लेते हुए आंखों से और श्रवण करते हुए और पढ़ते हुए उनके बारे में जब सुनता है पढ़ता है, तब कभी कभी उस समय भी विशेष करके जब के समय भी उनके स्मरण कर सकता है। और इसे करते हुए हम आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में, उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। तो लेकिन कृष्ण लीला में प्रवेश करने से पहले हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, क्योंकि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना तो ब्रज में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इसलिए अवतरित हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु। और कलयुग में लगभग सब लोग तो पतित है, कौलव शूद्र संभव शूद्र के समान है, क्योंकि अच्छे तरह से आजकल संस्कार जो होता है अच्छे तरह से नहीं होता है। इसलिए अवतरित हुए थे भक्ति की प्रेरणा से, अपनी इच्छा से, और युग धर्म स्थापित किया है ये महामंत्र के जप या कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गौरलील से पहले तो कृष्ण लील से पहले गौरलील का स्मरण करना है, जिससे पूजा होता है, पहले गुरु पूजा इसके बाद गौरंग पूजा इसके बाद कृष्ण पूजा होता है। और महामंत्र जप करने से पहले पंचतत्व मंत्र पहले बोलता है इसके बाद महामंत्र। तो वैसे ही स्मरण के अवस्था में भी तो पहले गौरलीला का स्मरण करना है, इसके बाद कृष्ण के लीला का स्मरण कर सकता है। और इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, उनके बारे में श्रवण करना है। इसलिए गौर पूर्णिमा के समय तो काल के शुभ शुभ ये तिथि पे श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है, गौ पूर्णिमा फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि, तुमके बारे में श्रवण करना है। ज्यादा से ज्यादा तो उसी दिन ज्यादा श्रवण करना है, और विशेष पूजा होता है जैसे अभिषेक होता है काल शाम को, और विशेष भोग अर्पण करना है। लेकिन वास्तव में प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करना है, उनके गुणगान करना है, उनके बारे में पढ़ना है, प्रतिदिन करना है। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वे जिसे काल तो मनाता है अभिषेक, और हमको मालूम है उसी दिन उनका आविर्भाव हुआ सच्चिनंदन, तो सच्ची माता के गर्भ से प्रकट हो गया थे मायापुर धाम में। और लेकिन हमको प्रतिदिन वास्तव में उनसे प्रार्थना करना चाहिए जिससे वे दिल में प्रकट हो जाए, जिससे हम उनके स्मरण कर सके। प्रतिदिन हमको करना है, और पहले गुरु से गुरु के पास जाना है, उनसे प्रार्थना करना चाहिए जिससे हमको स्मरण कर सके उनके, और उनकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मरण कर सकता है। और कब सबसे पहले तो नाम उनके, जैसे भगवान के नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सूर्य तो अभिनत्व नाम नाम यहाँ कृष्ण कृष्ण नाम बिना है, गौरांग गौर नाम बिना है। तो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना है, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तुमके नाम लेते हुए प्रेम से भाव से रोते हुए इसके बाद तो उनके रूप प्रकट हो जाता है दिल में। इसके बाद नाम रूप, इसके बाद गुण, लेकिन सबसे पहले उनके गुण के बारे में हमको श्रवण करना है, तब जब जप करे, जब पुकारता है, जब प्रकट हो जाता है, तब उनके गुण भी देख सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है और तब लीला में प्रवेश कर सकता है, लीला देख सकता है, उनकी कृपा से। इसलिए तत्व विचार और लीला विचार, तो तत्व के बारे में हमको श्रवण करना है और लीला के बारे में हमको भी श्रवण करना है। सबसे पहले समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, श्री राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, मूल रूप है, कृष्ण आदि पुरुष है, वैसे ही महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहायान्या कृष्ण ही है। राधा भाव द्युति सौमितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, श्रीमती राधानी का भाव द्युति लेकर आया है। तो पहले ये समझना चाहिए कि भगवान है और उनके दास है, लेकिन भक्ति के रूप में आया है हमको दिखाने के लिए कि कैसे साधन भजन करना है, कैसे जप करना, किस भाव से। तो स्थापित किया युग धर्म महामंत्र के जप या कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। लेकिन इसके बाद भाव भी दिया है, यह ब्रज भाव, विशेष करके गोपी भाव, अनार विदा चरिम चिरा कैन वात न कलो समर्पित मनोनुजल रसम सभक्ति श्याम, अनुजल रस देने के लिए आया है, गोपी भाव देने के लिए आया है। लेकिन दूसरे भाव भी दिया है, गोपी भाव में सब दूसरे भाव भी अंतर्गत है। तो इसलिए तो प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए गुरु और महाप्रभु के परिकार से, लेकिन विशेष करके काल के दिन, इसलिए उपवास भी रखता है जिससे हम ज्यादा जप कर सकते हैं, ज्यादा भजन कर सकते हैं, ज्यादा सेवा कर सकता है। कल नहीं सोना, प्रसाद नहीं लेना रात तक, और इसमें लीन रहना चाहिए, सेवा में, भजन में, नाम कीर्तन में, उनके उनके नाम रून रूप गुण लीलके में, श्रवण में, इसमें लीन रहना चाहिए। और भौतिक भावना नहीं होना चाहिए, प्रजालपनाएं होना चाहिए, भौतिक कार्यनाएं होना चाहिए, काल के दिन सिर्फ भजन, और इसे करते हुए हम आगे जा सकता है। लेकिन वास्तव में प्रतिदिन हमको भगवान से प्रार्थना कर रहा है जिससे वे प्रकट हो जाए हमारे दिल में, इसे करते हुए हमको देखना है कि हम आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में, जिससे हम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, अपना स्वरूप और भगवान के स्वरूप अनुभव कर करना है। नित्य ये स्थायी संबंध है, नित्य संबंध है, और जब उस अवस्था पर है तो सिर्फ तो उसी समय फिर से यहाँ पर जन्म लेना जरूरत नहीं है। अगर भी जन्म लेता है भगवान की इच्छा से, लेकिन भगवान की कृपा से उसी समय उनका हमेशा स्मरण कर सकेंगे, और ये स्थायी नित्य संबंध अनुभव करेंगे। तो ये भौतिक संबंध तो होता है, ऐसा ना है कि एकदम तिरस्कार का नहीं, ऐसा नहीं है। तो पिताजी है, माताजी है, वैष्णव हो या वैष्णव नहीं हो, लेकिन फिर भी पिताजी माताजी है। लेकिन समझना चाहिए कि कुछ समय ये संबंध है, लेकिन नित्य संबंध श्री गुरु, श्री गौरांगा श्री राधा कृष्ण जुगल के साथ है, और इसमें उस अवस्था पर पहुंचना हमको प्रयास करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद गौर हरि की, गौरांगा महाप्रभु की, हरे कृष्णा।